भारत की
जय।
इस्कॉन यूनिटी संस्थापक आचार्य जगत गुरु श्रीमदारायण की
जय।
ध्यानशकार ब्रह्मांस बलि गंगाचार्य के पश्चात नित्य लीला प्रदेश श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के स्वामी श्रीमदारायण की अनंत कोटि वैष्णव प्रयत्न की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से कोशिश श्री गौर भक्त शिशिर श्याम कुंडा कुंडी गोवर्धन मथुरा वृंदावन धाम मायापुरी धाम की गंगा माई चंदा माई वृद्ध सेतु से महाराज गौर सभी भक्तों की जय जयकार सभी भक्तों की जय जयकार सभी भक्तों की जय जयकार और
इस पुस्तक को पढ़ने से कृष्ण की शुद्ध भक्ति का ज्ञान प्राप्त होता है।
महेश्वरी पुरे
महेश्वरी पुरे
महेश्वरी पुरे
तीर्थ
नाना तीर्थ
अनेक
स्थानों को
देखी
देखी
देखकर
देखकर
कहाँ
कहाँ
वहाँ
वहाँ
नर्मदा तीरे
नर्मदा तीरे
नर्मदा नदी के तट पर
नर्मदा नदी के तट पर
अनुवाद और तात्पर्य श्री प्रभुपाद के द्वारा श्री प्रभुपाद की संवाद जी के द्वारा इसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु तापी नदी के तट पर पहुंचे। वहां स्नान करने के बाद वे महिष नदी को गए। वहां रहते हुए उन्होंने नर्मदा नदी के किनारे अनेक तीर्थ स्थानों को देखा। तात्पर्य तापी नदी की तापी कहलाती है। यह नदी ऊंचाई पर्वत से निकलती है और सौराष्ट्र से होकर पश्चिमी दिशा में बहती हुई अरब सागर में गिरती है। महाभारत में महेश नदी को महेश्वर का उल्लेख सहदेव की विजय यात्रा के प्रसंग में प्राप्त होता है। पांडवों में से सबसे छोटे भाई सहदेव ने इस प्रांत पर विजय प्राप्त की थी। महाभारत के अनुसार तथो रत्नानी उपादाय श्री महेश नदी लेरो तत्र नीले राजा स चक्र युद्धम नदश्रद्धा रत्न प्राप्त करने के बाद सहदेव महेश्वरी नगर में गए जहाँ पर उन्होंने राजा नील के साथ युद्ध किया। आज हम करते पूजो कंकाल संकीर्तन पुत्रों कमलाय काक्षो विश्वरो धर्म पालो वंदे चतुर्थ करो प्रणाम उतारो वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदो स्वामी दो गौरव पंचतत्वात्मकं कृष्णं भजरूपस्वरूपकं भक्तजनानां श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्रीअद्वैतवेदान्त शिवाचार्य हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे नमो विष्णु प्राणाय कृष्ण कृष्णाय भूतले चैतन्य महाप्रभु पादर गए थे तो वहाँ पर ब्राह्मण के घर में प्रसाद ग्रहण करने के लिए गए तो ब्राह्मण ने बोला कि बहुत शुभ समाचार है। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा बोलो क्या समाचार है। तो ब्राह्मण ने बोला कि श्री रंगपुरी जो है माधवेंद्र पुरी के शिष्य वो ठहरे हुए यहाँ पर। तो चैतन्य महाप्रभु तुरंत गए उनसे दर्शन करते और चैतन्य महाप्रभु ने उनको प्रणाम किया। तो श्री रंगपुरी श्रीपाद ने तुरंत बोला कि तुम जरूर माधवेंद्र पुरी से कनेक्टेड हो, कोई ना कोई संबंध है, क्योंकि जो भाव और जो प्रेम के लक्षण आप आपके शरीर में प्रकट हो रहे हैं वो कैसे हो सकते और भक्ति सिद्धार्थ सरस्वती ने उस पर कमेंट्री भी किया जो प्रभुपाद ने चैतन्य चरितमृत में लिखा। चैतन्य चरितमृत में प्रभुपाद की जो कमेंट्री है वो लार्जली दो भाषाओं पर आधारित है, अनुभाष्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने और अमृत प्रभाव भाष्य को भक्ति मोहन ठाकुर ने लिखा। आप पढ़ेंगे दोनों को सामने रखें तो आपको लग जाएगा कि सेम कुछ है, ऑलमोस्ट सेम चीज है। प्रभुपाद कई जगह पर प्रभुपाद ने अलग टीका भी दी है लेकिन जनरली सेम चीज है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने यहाँ पर टीका दी कि माधवेंद्र पुरी से पहले लक्ष्मीपति थे तो लक्ष्मीपति जो है थे उन तक जो है सिर्फ भगवान कृष्ण की उपासना होती थी। तो जब चैतन्य अजब माधवेंद्र पुरी श्रीपाद आए तो उन्होंने भगवान कृष्ण के साथ श्रीमती राधा रानी की उपासना शुरू की। इसलिए जो प्रेम भक्ति है उसके जो बीज है उसका बीज माधवेंद्रपुरी श्रीपाद को माना जाता है। कहीं भी जाकर देख लो माधवेंद्रपुरी श्रीपाद जो है वो प्रेम भक्ति के उज्ज्वल रस के बीज माने जाते हैं, सीख रहे हैं। उन्हीं से उनका जो वृक्ष है भक्ति का, जो प्रेम भक्ति का वृक्ष, उन्हीं से माधवेंद्रपुरी से निकला। तो माधवेंद्र तो श्री रामपुरी श्रीपाद ने उनको बोला कि आप तो जरूर संबंधित हो माधवेंद्रपुरी से। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा आपने ठीक समझा है, जो श्री ईश्वरपुरी है वो मेरे गुरु हैं। तो ये प्रसंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है कि जिस प्रकार श्री रामपुरी ने चैतन्य महाप्रभु को देखकर तुरंत ये जान लिया कि कहां से कनेक्टेड है, उसी प्रकार हम लोग मंदिर के अंदर या मंदिर से बाहर जब भी हम जाते हैं लोग समझ जाते हैं इस कौन के मोदी से। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि ये बड़ी जिम्मेदारी का काम हो गया। इसका मतलब यह है कि हम एक क्षण की हम फ्री रह सकते हैं, हम ये नहीं सोच सकते कि चलो कौन देखता है क्या फर्क पड़ेगा, पांच मिनट रिलैक्स करते तो हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अब श्रील प्रभुपाद के साथ हमारा नाम जुड़ गया। हम जो भी करेंगे, जैसा भी हम व्यवहार करेंगे, जैसे हम बातचीत करेंगे, जैसे हम चलेंगे, जैसे हम खाएंगे, जैसे हम कीर्तन करेंगे, जैसे हम जप करेंगे, लोग देख के हमें प्रभुपाद से कनेक्ट कर देंगे। सो प्रभुपाद का यश बढ़ाने की जिम्मेदारी किसके आ गई है, हम लोगों पे आ गई। तो हम लोगों को बहुत ही सावधानी से व्यवहार करना पड़ेगा हर क्षण, ये समझिए। इस प्रसंग में बहुत शिक्षा पर बातें हैं, कोशिश करेंगे इनके बाद एक पर चर्चा करने की। तो अगर हम ये प्रश्न उठाएं कि तो अब बात कर रहे थे कि शिवपुरी ने बोला कि जरूर आप कनेक्टेड हो, उन्होंने कहा हाँ जी मैं कनेक्टेड हूँ। तो फिर शिवपुरी ने पूछा कि अच्छा तुम कहाँ पे रहने वाले? तो जब मैंने महात्मा ने कहा मैं नवदीप का रहने वाला हूँ मायापुर का, तो शिवपुरी ने बोला मैं तो वहां क्या था मां जी ने पुलिस के पास के साथ, और वहां पर मैं एक बहुत ही महान भक्त से मिला था, उनका नाम क्या है जगन्नाथ मिश्र। मैं वहां गया जगन्नाथ मिश्र के घर गया और मुझे उनकी पत्नी भी याद है, बिल्कुल एक माता की तरह उन्होंने हमें भोजन करवाया। मातृवत फल बारिश, बिल्कुल एक माता की तरह उन्होंने भोजन कराया और एक मुझे तो लगाया तो जगत की माता है शेषित। ये प्रभाव होता है जब वैष्णव कोई शुभ भक्त किसी के घर में जाए, चाहे वो स्वयं वसुदेव ही क्यों ना हो, उसका प्रभाव आता है। चाहे स्वयं वासुदेव कृष्ण क्यों ना हो, एक भक्त अगर घर में जाएंगे उनके तो उसका प्रभाव पड़ेगा। और भगवान कृष्ण ने अपने आचरण के द्वारा दिखाया, महाभारत में उसका विस्तार से वर्णन आ रहा है कि भगवान कह रहे हैं कि अगर आपके घर में भक्त आ गए तो सर्वस्व नछावर करके उनकी सेवा करो। जैसे भगवान कृष्ण ने दुर्वासा मुनि के उदाहरण के द्वारा बताया कि दुर्वासा मुनि आए महाभारत रहने के लिए द्वारका में, तो भगवान कृष्ण ने बोला भाई किसी ने उनकी सेवा करनी है तो कर लो, कोई आगे नहीं आया। सबको पता था कि भाई एक बार नाराज होकर श्राप दे देंगे सब खत्म कर देंगे। भगवान कृष्ण को अपने महल में गए और रुक्मिणी को बोला रुक्मिणी देवी को भैया सेवा करो, तो बोला चलो भगवान। तो दुर्वासा मुनि कभी ऐसा होता था कि हजारों भूतों का खाना अकेले खा जाते थे, कभी खाते ही नहीं, निरंतर तत्पर रहते थे भगवान कृष्ण और रुक्मिणी देवी उनकी सेवा कर रहे हैं। तो आप सबको पता है एक बार दुर्वासा मुनि ने बोला कि मुझे खीर बना के लाओ, तो खीर बना के लाए तो उन्होंने भगवान कृष्ण को बोला अपने शरीर पे सारा लेप लो, तो भगवान कृष्ण सारी खीर अपने शरीर पे जो है लेप दी, और उन्होंने कहा मुझे रथ की सवारी करनी है तो रथ आ गया। उन्होंने कहा एक घोड़े को हटा दो, रुक्मिणी को लगा दो उसमें, तो रुक्मिणी देवी को लगा दिया उसको बड़े में, और तो चाउट मारने दुर्वासा मुनि चाउट मारे जल्दी चलो जल्दी चलो, इतनी कोमल है रुक्मिणी देवी, मतलब कभी मतलब राजा की पुत्री राजा की पत्नी कभी काम नहीं किया होगा भगवान कृष्ण की सेवा के लिए, कोमल पैर कोमल शरीर त्वचा उसको चाहो वो सारे जो भगवान कृष्ण के संबंधी हैं वो अपने तलवारों के हाथ रखने वाले थे, कब इशारा हो कब काम काम करते क्या कर रहे हैं भैया, ये तो प्रकाश नहीं बना। लेकिन भगवान कृष्ण चुप करके रथ के पीछे दौड़ रहे थे, दुर्वासा मुनि ने कहा नहीं चल रहा रथ, रथ से कूद के बाहर आ गए और अकेले दौड़ना शुरू कर दिया, पीछे पीछे भगवान कृष्ण और रुक्मिणी देवी दौड़ रहे हैं, वो गलती हो गई माफ कर दीजिए गलती हुई माफ कर। दुर्वासा मुनि ने कहा भैया सैटिस्फाई हो गया मैं तो सक हो गया, और उन्होंने आशीर्वाद दिया भगवान कृष्ण स्वयं भगवान कृष्ण को रुक्मिणी देवी को आशीर्वाद दिया, रुक्मिणी देवी को उन्होंने बोल दिया कि तुम कभी भी एज का इफेक्ट नहीं होगा और तुम्हारे जो शरीर है हमेशा सुगंधित रहेगा। और भगवान कृष्ण को बोला कि देखो तुमने अपने शरीर पर खीर जो लेपन किया बस भैया कोई हथियार का असर नहीं होगा, लेकिन एक जगह मुझे समझ नहीं आई तुमने लेप नहीं किया कहां पर तलवों पर, क्या ये प्रॉब्लम कर दी ये तुमने मिस्टेक कर दी। दुर्वासा ऋषि ने उनको सो कभी भी वैष्णव भक्त धन्य है, भगवान कृष्ण और धारण के द्वारा दिखा रहे हैं कि भैया उनकी सेवा में सब कुछ लगता है और उसके प्रभाव से जो शुभ फल प्राप्त होता है उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। स्वयं आप देखिए भगवान ही अवतरित हो गए उनके घर में, बलराम जी प्रकट हो गए उनके घर में, ये सब वैष्णवों की सेवा के फलस्वरूप होते हैं। ये सारे काम ऐसा क्यों करके कोई एक कारण है, बहुत सारे कारण बनते हैं किसी एक चीज को होने के लिए। यहां पर एक प्रश्न मैं उठाना चाहता हूं, वो प्रश्न ये है कि बाबा चैतन्य महाप्रभु पुरुषोत्तम क्षेत्र में जगन्नाथपुरी में रहे, अब ऐसा क्या हो गया कि जगन्नाथपुरी छोड़कर दक्षिण की यात्रा के लिए चल दिए, पूरे संसार में कोई सबसे उत्तम स्थान है तो जगन्नाथपुरी है, तो वहां पर चैतन्य महाप्रभु रहे हैं तो फिर दक्षिण भारत जाने की जरूरत ही है क्यों? एक्चुअली में चैतन्य महाप्रभु गए दक्षिण भारत की यात्रा, बृहद भागवत में सनातन गोस्वामी वर्णन करते हैं एक बहुत ही सुंदर ब्राह्मण का, वो ब्राह्मण की खासियत थी उसके पास एक मंत्र था गोपाल मंत्र, वो मंत्र जब के जहां जाना चाहता था वहां पहुंच जाता था, तो उसको कहीं से पता चला कि जो स्वर्ग लोक में बहुत अच्छा होता है वहां पर इंद्र है और स्वयं भगवान वामन वहां पर विराजमान है, तो उसने फटाफट गोपाल मंत्र जगा और उसने सोचा कि मुझे स्वर्ग लोक जाना है, तब स्वर्ग लोक पहुंच गया तो ब्राह्मण, और वहां पर उसने साक्षात भगवान वामन के दर्शन किए। इंद्र जो है भगवान वामन की उपासना कर रहे हैं और वामन देव जो है वो इंद्र के हाथ से वस्तुएं ग्रहण कर रहे हैं और वो ब्राह्मण देख रहे हैं, बल्कि एक बार तो ऐसा भी हुआ कि इंद्र को इंद्र ने कुछ गलती कर दी थी, उसको छोड़ के भागना पड़ा स्वर्ग लोक, तो भगवान वामन देव ने बोले कि ब्राह्मण का मार दो मेरी पूजा में, और वो ब्राह्मण जो है वो भगवान वामन देव की उपासना कर रहे, उनको अपने हाथ से भोजन दे रहे, फिर भी उसके मन में क्या है ब्राह्मण के मन में कि मुझे यहां पर सुख नहीं मिल रहा, जो सुख मुझे पुरुषोत्तम क्षेत्र में जगन्नाथ जी के दर्शन करके हो रहा था वो मुझे यहां नहीं मिल रहा, मैं नहीं आ सकता। उस पुरुषोत्तम क्षेत्र में चैतन्य महाप्रभु रहते हैं और चैतन्य महाप्रभु छोड़कर दक्षिण भारत की यात्रा के लिए चले, और बल्कि जब चैतन्य महाप्रभु गए थे दक्षिण भारत की यात्रा के लिए तो पीछे से महाराज प्रताप पुत्र आए सार्व भट्टाचार्य के पास और उन्होंने सार्व भट्टाचार्य से कहा चैतन्य महाप्रभु का है दिखते थे, उन्होंने बोला भैया वो दक्षिण भारत की यात्रा कर रहे हैं, आपने उनको जाने क्यों दिया, क्यों चले गए वो जगन्नाथ जी आ गए हैं क्यों चले गए, आपने उनको जाने क्यों दिया? तो जो उत्तर सार्व भट्टाचार्य ने दिया वही उत्तर कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने इस नौवें अध्याय के पहले श्लोक में उसका उत्तर दे रखा है। सार्व भट्टाचार्य ने कहा कि चैतन्य महाप्रभु गए हैं दक्षिण भारत की यात्रा के लिए वहां के लोगों का कल्याण करें, कृष्णदास कविराज गोस्वामी पहले श्लोक में नवे अध्याय के बोल रहे हैं कि जो दक्षिण भारत के लोग हैं वो एक हाथी की तरह बलवान है, एक हाथी की तरह बलवान, कोई उसके सामने टिक नहीं सकता, लेकिन जैसे एक मगरमच्छ ने गजराज को पकड़ लिया है ऐसे ही जो कुसिद्धांत है उन्होंने दक्षिण भारत के लोगों को पकड़ लिया, और हालांकि कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने उन कु सिद्धांतों का वर्णन नहीं किया था श्लोक के अंदर, लेकिन अनुवाद में श्रील प्रभुपाद ने वो कु सिद्धांतों का वर्णन कर दिया। और क्या बोला श्रील प्रभुपाद ने वहां पर, ट्रांसलेशन में पहले श्लोक की श्री चैतन्य महाप्रभु ने दक्षिण भारत के निवासियों का हृदय परिवर्तन किया। ये लोग हाथी के समान बलशाली थे किंतु वे विभिन्न विचारधाराओं तथा बौद्ध जैन मायावादी दर्शन। ये श्लोक के अंदर नहीं है, लेकिन श्रील प्रभुपाद ने भावार्थ जब दिया तो उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया कि ये जो विचारधाराएं जो गलत विचारधाराएं कौन सी है उन्होंने बता दिया, बौद्ध जैन और मायावादी। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि वो मायावादी सिद्धांत में बौद्ध जैन धर्म के जो चंगुल में फंसे हुए हैं और अपना जीवन जो है वो आत्महत्या के कगार पर खड़े हैं, जीवन छूटने वाला है, उन लोगों का उद्धार करने के लिए चैतन्य महाप्रभु दर्शन महाराज की यात्रा में गए। तो आपने रोका नहीं उनको जाने से, सारों भट्टाचार्य ने कहा कि वे स्वतंत्र ईश्वर है, उनको कोई नहीं रोक सकता। जहां भी चैतन्य महाप्रभु जाना चाहेंगे वो जाएंगे, उनको रोकने का ताकत शक्ति किसी में भी नहीं। तो जब श्रीनंदपुरी ने चैतन्य महाप्रभु को बताया कि मैं शंकराचार्य को जानता हूँ, जगन्नाथ मिश्र को जानता हूँ, तो चैतन्य महाप्रभु ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात की। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि पूर्व आश्रम में वे मेरे पिता और भाई थे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि आपने एक बार घर छोड़ दिया तो परिवार से कनेक्शन रहता भी है और नहीं भी रहता, कनेक्शन है भी और नहीं भी है। अब आप परिवार की चिंता नहीं कर सकते, अब आप परिवार के पीछे नहीं दौड़ सकते। आपने एक बार घर छोड़ दिया, भक्ति में जुड़ गए, तो अब आपकी पूरी जो श्रद्धा है, पूरा फोकस आपका भगवान की सेवा में, वैष्णव की सेवा में लग जाना चाहिए। अब आप ये नहीं कह सकते हो मेरी मम्मी का क्या होगा, मेरे डैडी का क्या होगा, वो बात बेकार की है, अब उसके बारे में बात नहीं कर सकते। और श्रील प्रभुपाद जी ने दिखाया अपने आश्रम के द्वारा, श्रील प्रभुपाद जी संन्यास लेने के बाद भी अपने परिवार से संबंध रखा भी और नहीं भी रखा। श्रील प्रभुपाद ने अपने परिवार के लोगों के लिए एक स्टाइपेंड, एक फिक्स अमाउंट, एक भत्ता उनके लिए निर्धारित कर दिया था। और हालांकि उनके परिवार वाले जोर उठा रहे थे और पैसा दो और पैसा दो, इस गांव के पास तो बहुत पैसा है, प्रभुपाद ने नहीं दिया। प्रभुपाद ने बोला इतने पैसा मिलेगा भैया, और प्रभुपाद उनसे प्रभुपाद ने बाद में डायरेक्टली डील करना भी बंद कर दिया था। प्रभुपाद ने किसको सामने लेके आए थे? प्रमाण कृष्ण गोस्वामी महाराज को। प्रमाण कृष्ण गोस्वामी महाराज को प्रभुपाद ने बनाया तुम डील करो, मेरे को सामने सिर बजाने की जरूरत नहीं है, जो तुम फैसला कर लोगे वो ठीक होगा। और प्रमाण कृष्ण गोस्वामी महाराज बहुत ही मजबूती से उनके साथ डील करते थे। इनफैक्ट एक बार प्रभुपाद के एक पुत्र को कार चाहिए थी कि मायापुर में एक कार खड़ी है, तो उन्होंने बोला एक कार मुझे दे दो, मैं अपने बिजनेस में यूज करूंगा। तो कमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने बोला कि तुमने भैया ही कुछ पैसे देने का हमें वायदा किया था, पहले वो पैसे दो तो कार देंगे। तो उन्होंने प्रभुपाद से कंप्लेन कर दी पुत्र ने, तो प्रभुपाद ने बोला जैसे कमाल कृष्ण बोल रहे भैया वैसे कर दो, घर को बार बार प्रशांत करने की जरूरत नहीं है। तो कनेक्शन है भी और कनेक्शन नहीं भी है, दोनों चीजों का ध्यान रखते हैं। ज्यादा अब उनके वो जीवन कैसे बिताएंगे, क्या होगा, क्या नहीं होगा, उसके बारे में ध्यान ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। स्पेशली जो ब्रह्मचारी है और सन्यासियों को तो वैसे आवश्यकता नहीं। तो पूर्व समय इस शब्द, ये जो शब्द है जो 301 में प्रयाग में है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सब भक्तों को उसका ध्यान रखना चाहिए। और यहाँ पर 310वें श्लोक में प्रयाग में जो प्रभुपाद वर्णन कर रहे हैं सहदेव का, कि सहदेव महिष्मती पूर्ण गए थे, महाभारत में उसका वर्णन आया। तो महाभारत का एक्चुअली में दो जगह पर वर्णन आया है महिष्मती पूर्ण का। एक जगह वर्णन आया महिष्मतीपुर का सभा पर और एक जगह वर्णन आया महिष्मतीपुर का अनुशासन करके महाभारत में। तो जो जब युधिष्ठिर महाराज ने यज्ञ करने का निर्णय लिया तो उन्होंने अपने चारों भाइयों को चारों दिशाओं में भेज दिया था। जैसे भीम है पूर्व दिशा में गए, अर्जुन जो है वो उत्तरी दिशा में गए, और नकुल जो है वो पश्चिमी दिशा में गए, और जो सहदेव है सबसे छोटे वो दक्षिण दिशा की ओर गए। और जब दक्षिण दिशा में जाते तो जीतते 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 सारे रास्ते में जितने भी राजा राज्य आ रहे थे सबको जीतते जा रहे थे और फाइनली वो पहुंच गए महिष्मतीपुर। तो सभा पर वर्णन है कि महिष्मतीपुर जो पुर है वहां पर राजा नील रहते थे। तो जो राजा नील है उनसे अब उनका युद्ध शुरू हो गया। युद्ध शुरू हो गया, हारने नहीं आ रहे महाराज थे, हरा नहीं पाए सहदेव। और अचानक क्या हुआ कि जो सहदेव की जो सेना थी उसके चारों आगे और जो आज है धीरे धीरे वो गोला सिकुड़ना शुरू हो गया। बड़ी विपत्ति का कारण बन गया। तो सहदेव जो है उन्होंने कुशल घास बिछाई और इसके ऊपर आसन लगाकर बैठ गए और अग्निदेव से उन्होंने प्रार्थना की। उन्होंने अग्निदेव को एक क्वेश्चन पूछा, सहदेव ने पहले उनकी प्रशंसा की कि आप ऐसे हो, आप देवताओं के मुख हो, आप ये हो, आप वो हो, आप तेज है, फलाना ढिकाना, दुनिया भर की उन्होंने प्रार्थनाएं की। और फिर उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा सहदेव ने अग्निदेव से, उन्होंने कहा कि भैया एक बात बताओ, मैं आपके लिए तो ये सारे काम कर रहा हूं, आप अपना क्यों लगा रहे हो? यज्ञ के लिए तो काम कर रहे थे और यज्ञ में आहुति किसको देंगे? अग्नि को देंगे। तो सहदेव ने कहा आपके लिए तो सारे काम कर रहे हैं, आप खुद ही इसमें अपना लगा रहे हो, तो चक्कर क्या है? और आखिर आप राजा नील की हेल्प क्यों कर रहे हो और हमसे आप मुझे जलाने के लिए तत्पर हो आप और नील राजा नील की हेल्प कर रहे हो जो कि आपके यज्ञ में बाधा पहुंचा रहे। तो जन्मेजय ने यह क्वेश्चन पूछा कि आपके लिए रीजन क्या है, ऐसा क्यों हो गया कि अग्नि जो है वो सहदेव को जलाने के लिए तैयार हो गई। तो फिर जन्मेजय ऋषि को बताया, जन्मेजय को बताया राजा को कि जो अग्निदेव है ये मोहित हो गया था राजा नील की पुत्री को देखकर, और इसने जो अग्निदेव है उन्होंने उसे उसकी पुत्री का हाथ मांगा। तो राजा नील ने अपनी पुत्री का हाथ तो दिया और उनसे दो वरदान मांग लिए कि फाइन आप मेरी बेटी का हाथ ले लो, दैट्स ओके, लेकिन आप मुझे दो वरदान दो। तो अग्नि ने पूछा अच्छा बोलो क्या चाहिए? तो राजा नील ने बोला पहली बात यह है कि आप मुझे छोड़ के बचा इस राज्य में बने रहें, और दूसरा राजा नील ने वरदान बोला कि कितना भी भयंकर शत्रु आ जाए युद्ध में मेरी हार नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं हो कि हम कंफ्यूज हो जाए लड़ाई के अंदर, मेरी सेना और मैं कभी कंफ्यूज नहीं होनी चाहिए। तो अग्निदेव ने कहा तो खास को फाइन, उसकी पुत्री से विवाह कर लिया और वहां पर रहना शुरू कर दिया। टोकरी देने का भाई मैं तो आउट हूं, मैं राजा हीर के अनुगत हूं, तो तुम ऐसा करो राजा हीर से संधि कर लो, ये तुम्हारे साथ में मिल जाएंगे और तुम्हें गिफ्ट दे देंगे, तो तुमने जीत भी लिया नहीं भी जीता, तुम्हारा काम बन जाए आगे बढ़ जाए। तो फिर अग्नि देने का कि आप राजा हीर को वहां से संधि करो। सेम वर्णन अनुशासन पर्व में भी आ रहा है लेकिन थोड़ा डिफरेंट है। अनुशासन पर्व में अनुशासन पर्व क्या है? अनुशासन पर्व एक्चुअली है कि महाभारत का युद्ध खत्म हो गया था, महाभारत का युद्ध खत्म हो गया तो युधिष्ठिर महाराज भगवान कृष्ण पांडवों को और सारे जितने भी जीवित बचे थे लोग सबको लेकर कहां गए? भीष्म पितामह के पास। और भीष्म पितामह को उन्होंने बोला कि मेरा हृदय बहुत फटा जा रहा है, मेरे को बिल्कुल सुख नहीं मिल रहा, ये सारे काम के लिए मैं जिम्मेदार हूं। तो युधिष्ठिर महाराज ने भीष्म पितामह से कई क्वेश्चन किए और आप सबको वो क्वेश्चन आप पढ़ोगे कि उत्तम कोटि के क्वेश्चन है और भीष्म पितामह ने ऐसे सभी उसके आंसर दिए हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। तो उन क्वेश्चन में से युधिष्ठिर महाराज ने एक क्वेश्चन पूछा भीष्म पितामह से, उन्होंने कहा कि आप प्लीज मुझे ये बता दो कि जो गृहस्थ है जो परिवार में रह रहा है वो मृत्यु पर विजय कैसे प्राप्त कर सकता है, जो घर में रह रहा है पैसे कमाने में लगा हुआ है घर वालों की चिंता में लगा हुआ है, मुझे ये समझा दो कि ऐसा व्यक्ति क्या मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकता है, कर सकता है तो कैसे कर सकता है। तो भीष्म पितामह ने इसके उत्तर में उसका उत्तर दे रहे थे, तो भीष्म पितामह ने ये वर्णन किया है वहां पर कि एक राजा थे उसका नाम था दुर्योधन, तो धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन ने एक दूसरे राजा थे उसका नाम दुर्योधन था और उसकी पत्नी का नाम था सुदर्शन। सो वहां पर जो उसकी पुत्री का नाम सुदर्शन था और वो सुदर्शन जो पुत्री थी वो इतनी सुंदर थी कि पूरे संसार में 14 भूमों में उससे सुंदर स्त्री नहीं थी, लड़की नहीं थी। और जो अग्निदेव है अग्निदेव मोहित हो गए। अब प्रॉब्लम वहां पर खड़ी हो गई कि प्रॉब्लम ये होगी कि अग्नि आप कितनी जलाओ उनके राज्य में अग्नि चलती नहीं थी, धीमी धीमी यहां से चलती थी। और जब वो लड़की सुदर्शन जब खूब मारती थी तो अग्नि प्रज्वलित हो जाते थे, इतने मोहित हो गए थे अग्निदेव उस लड़की से। उन्होंने तो जो दुर्योधन राजा है वो यज्ञ कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे तो उस समय अग्निदेव ब्राह्मण के रूप में आए दुर्योधन के पास और राजा दुर्योधन से बोला कि भैया आपकी पुत्री का हार मुझे दे दो। तो दुर्योधन ने कहा क्या भूखा नंगा ब्राह्मण कहां से आ गया, मैं राजा कैसे दे दो अपनी पुत्री का हार, तो भैया कुछ भी ले ले बेटी का हार मैं मांग। तो ब्राह्मण को गुस्सा आ गया, छोड़ के चला गया। वो ब्राह्मण अग्निदेव है छोड़ के चले गए तो यज्ञ से अग्नि गायब हो। अब वो ब्राह्मण लगे हुए मंत्र पढ़ने में अग्नि नहीं चलती, तो राजा दुर्योधन ने बोला ब्राह्मण को देखो भैया दो ही कारण हो सकते हैं अग्नि जलने के, या तो मुझसे गलती हुई है या तुमसे गलती हुई है, नहीं दो ही बंदे तो हैं, या तुमसे गलती हुई है मुझसे गलती हुई है, तो भैया पता लगाओ क्या गलती हुई है उसका निवारण करो। तो ब्राह्मण जो है समाधि में चले गए सारे और समाधि में उन्होंने भागते रहे ढूंढते रहे तो ब्राह्मण हो गए, बोले मारे भैया क्या हो गया। तो ब्राह्मण ने कहा अरे मैं अग्नि हूं तुमने भैया मेरा पान कर दिया, बोलो नहीं नहीं आप आओ निवारण हो जाएगा। तो दुर्योधन ने अपनी पुत्री का हार तो ब्राह्मण को अग्नि देव को दिया और उसे बोला कि आप प्लीज यहां पर रहना। तो जब सहदेव आए वहां पर सचेत ने उनसे दुर्योधन से युद्ध किया तो अग्नि देव ने उनको जलाने की कोशिश की, फिर संधि हुई। तो ये कल्प भेद होगा, दो अलग अलग घटनाएं हैं। तो दो घटनाओं में डिफरेंट डिफरेंट कल्प में घटनाएं हुई होंगी, एक बार राजा दुर्योधन के साथ और एक बार राजा भीम के साथ। इतना महत्वपूर्ण है तो जो क्वेश्चन था, जो क्वेश्चन ये था कि विषय पुराना से जो क्वेश्चन पूछा था, युधिष्ठिर महाराज ने क्या क्वेश्चन पूछा था,
व्यक्ति कैसे मृत्यु को जीत
सकता है, वो क्वेश्चन का आंसर तो आया नहीं है कि वो क्वेश्चन का आंसर क्या है। वो क्वेश्चन का आंसर इतना सिंपल है कि अगर आप बैठे नहीं होंगे गिर जाओ, इतना सिंपल है। वो क्वेश्चन का आंसर विषय वृंदावन ने दिया कि आपके घर में अगर अतिथि आ जाए तो अतिथि की बिना किसी रिजर्वेशन, बिना किसी संकोच के, बिना सोचे समझे उनकी सेवा कर देंगे, और अगर सेवा करोगे गृहस्थ के लिए, अगर आपने अतिथि को संतुष्ट कर दिया, वो एक बात ऐसा रास्ता है कि आप मृत्यु पर विजय प्राप्त करोगे। तो फिर विश्वकर्मा ने एक्सप्लेन किया तो उन्होंने बताया कि जो अग्नि ने सुदर्शन से विवाह कर लिया तो फिर उसका पुत्र हुआ, पुत्र का नाम भी सुदर्शन था। तो उन्होंने बताया कि जो सुदर्शन है उसने राजा थे ओघवत, तो उस ओघवत राजा की एक पुत्री थी ओघवती। तो जो ओघवत राजा है वो महाराज मलिक, महाराज मलिक का नाम सुना है ना आप सबने, तो महाराज मलिक जो है उसके दादा थे ओघवत। तो उसकी पुत्री थी ओमवती, ओमवती का विवाह सुदर्शन से हुआ। तो सुदर्शन ने ओमवती को बोला, देखो मैं तुम्हें सिर्फ एक बात बोलूंगा, अगर तुम मेरी बातों को सीधे सीधे लेती हो तो घर में अतिथि आ जाए तो उसके सत्कार में कभी मत छोड़ना, जो भी हो अतिथि का सत्कार करना ही करना है। तो धर्म ने उनकी परीक्षा ली और बहुत ही कठिन परीक्षा ली, और ऐसी परीक्षा ली कि उस परीक्षा के समय मृत्यु स्वयं अपना भाला लेकर उस सुदर्शन के साथ चल रही थी कि जैसे ही अपने गलती करेगा मार दूंगा, लेकिन उस सुदर्शन ने गलती नहीं की और उसने विजय प्राप्त कर ली। ऐसे ही प्रसंग जो है वो श्री संप्रदाय में भी आता है, जहां पर अतिथि वहां पर अतिथि स्वयं गुरु की थी, गुरु को प्रसन्न करने के लिए जो एक भक्त उसकी जो स्त्री है उससे अपना सर्वस्व नछावर करने का जो है संकल्प कर लिया था, वो तो भगवान की कृपा से सब ठीक हो गया। जो किराने वाला व्यक्ति था उसका दिमाग पलट गया और उसने लास्ट में उससे माफी मांग के बराबर होने पर। तो ये विषय पिता ने बोला कि ये कारण है कि अगर आप अतिथि की सेवा करोगे तो अतिथि की सेवा करने के माध्यम से जो वैष्णव है, जो गृहस्थ है, वो मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकता है। इसीलिए जो वैष्णव है वो घर घर जाते हैं ये अवसर प्रदान करने के लिए, और इसीलिए भक्तों को वैष्णव को अपने घर में आमंत्रित करना चाहिए। और एक्चुअली पृथु महाराज ये बोल रहे हैं, पृथु महाराज बहुत ही महत्वपूर्ण बात बोल रहे हैं भागवत के 14 स्कंध के 22वें अध्याय में। अच्छा ये बंद करने के क्यों है, तो चालू ही रखते हैं। पृथु महाराज भागवत के 14 स्कंध के 22वें अध्याय में बता रहे हैं 10वें और 11वें श्लोक को। पृथु महाराज बोल रहे हैं कि अगर आप अमीर नहीं हो, अगर कोई व्यक्ति अमीर नहीं है फर्क नहीं पड़ता, अगर भक्त वैष्णव संत साधु घर पे आते हैं जीवन का स्वागत करो, उससे बाहर व्यक्ति कोई नहीं है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अमीर है और उसने वैष्णवों का भक्तों का सम्मान नहीं किया, आदर नहीं किया, वो व्यक्ति उसका जो घर है वो सांप के जो कोटक होती है ना, सांप के घर के समान है। चाहे उसका घर सैंडल चंदन चंदन का वृक्ष क्यों ना हो, चंदन जो वृक्ष है मैंने वस्तु किया है, लेकिन फिर भी चंदन का वृक्ष है तो है, लेकिन चंदन का वृक्ष है और ऐसा वृक्ष है कि विषैले सांप निकले हुए उस पर। तो शिव उपाय होते हैं कि ऐसे व्यक्ति कौन होते हैं जिन्होंने अपने बैकग्राउंड उसके बांधे होते हैं, लिखा होता है ना बिहेवियर ऑफ डॉग्स से, अपने घर में आने नहीं देते किसी को। शिव प्रकार होते हैं ऐसे घर, वो घर है जहां पर वैष्णव को भक्तों को घर में आने नहीं देते, दूर से बता देते, वो लोग विषैले सांपों के समान है, उनके कल्याण का कोई भी मार्ग नहीं है। इसलिए वैष्णव का कर्तव्य है, भक्तों का गृहस्थों का कर्तव्य है कि वो भक्तों को अपने घर में आमंत्रित करें और उसे सुने, उसे कथा सुने, उसे भगवान के बारे में सुने। इसीलिए वैष्णव जगह जगह जाते हैं, इसीलिए चैतन्य महाप्रभु स्मृति लीला के प्रसंग में पुरुषोत्तम क्षेत्र छोड़कर दक्षिण भारत के लिए थे, और यही कारण है कि श्रीलंका प्रकार वृंदावन छोड़कर अमेरिका जैसे घोर स्थान जो मतलब जल रहा होता है ना, जैसे कुछ जगह जल रही है, ऐसे स्थान पर गए और युधिष्ठिर महाराज ने विदुर जी को बोला, विदुर जी को उन्होंने बोला कि जो वैष्णव है, जो साधु है, जिनके हृदय में स्वांत स्नेह धराधरा, जिनके हृदय में स्वयं भगवान विष्णु विराजमान है, ऐसे भक्त जहां पर भी जाते हैं वो जगह की स्थान बन जाते हैं। श्रील प्रभुपाद को देखो, श्रील प्रभुपाद जहां भी गए वो स्थान की स्थान बन गया, जहां पर भी श्रील प्रभुपाद ने पैर रखा चाहे कुछ घंटों के लिए रखा, जहां पर भी श्रील प्रभुपाद गए, जहां पर भी चैतन्य महाप्रभु गए, हर भक्त का कर्तव्य है, फर्ज है कि वो उन स्थानों को जाकर देखे। भक्ति को ठाकुर बोल रहे हैं और हमारे विजय स्थाने भ्रमण करी रखे, से सब स्थान हेरी को आमी प्रणय भगत रखे। जहां जहां पर चैतन्य महाप्रभु गए, जहां जहां चैतन्य महाप्रभु ने अपने चरण रखे, हर भक्त को उस स्थान पर जाना चाहिए। तो जहां जहां चैतन्य महाप्रभु ने चरण रखे, मतलब जहां चैतन्य महाप्रभु गए, जहां पर श्री प्रभुपाद गए, जहां जहां श्री प्रभुपाद गए, चैतन्य महाप्रभु गए, सब भक्तों को मिलकर उन सब स्थानों पर जाना चाहिए, क्योंकि वो सब स्थान जो है वो तीर्थ स्थान है। और चैतन्य महाप्रभु श्री प्रभुपाद जहां भी जाएंगे, उनका एकमात्र कार्य है उन तीर्थ स्थानों को पवित्र करना। तीर्थ की गुणवंती तीर्थानी, युधिष्ठिर महाराज ने बोला विदुर महाराज को कि आप, आपकी क्या बात है, आप तो जहां जाते हो वो तीर्थ स्थान को, आप तीर्थ स्थान है इसलिए कि आप वहां पर। इनफैक्ट जब गंगा जी ने एक्सेप्ट कर लिया था कि मैं धरती पर आ जाऊंगी, ओके फाइन, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, मैं आने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक प्रॉब्लम है, गंगा जी ने बोला, भगीरथ जी ने, भगीरथ ने बोला अब क्या प्रॉब्लम खड़ी हो गई, सारी चीजें सौरभ हो गई, शिव जी को मना लिया, दुनिया भर के जो समस्याएं थी दूर कर दी, गंगा जी तैयार हो, अब एक नई प्रॉब्लम खड़ी करती। तो गंगा जी ने बोला प्रॉब्लम यह है भैया कि मैं आ तो जाऊंगी पृथ्वी पर, लेकिन पृथ्वी पर बहुत ही पापी व्यक्ति रहते हैं, किसी को रोक सकते नहीं, अब वो पापी व्यक्ति भी आकर मुझ में स्नान करेंगे, अपने सारे पाप मुझ में छोड़ जाएंगे, मेरा क्या होगा। तो भगीरथ ने, भगीरथ ने उस समय उनको ये आंसर दिया था, भगीरथ ने, भगीरथ ने बोला था आप प्लीज चिंता मत कीजिए, पापी स्नान करेंगे, मान लिया कि वो लोग आकर अपने पाप आप में छोड़ जाएंगे, लेकिन भगवान के शुद्ध भक्ति आएंगे और जब वो आप में स्नान करेंगे तो आपको सारे पापों से मुक्त कर देंगे। तो वैष्णव में वो ताकत है, वैष्णव में वो शक्ति है, दृश्य ने पवित्र करो, गंगा में स्नान करने से पवित्र होंगे, बहुत टाइम के बाद वैष्णव के दर्शन से पवित्र हो जाएंगे। वैष्णव में ताकत है, इसलिए वैष्णव को कभी भी सत्य में नहीं लेना चाहिए और भरसक प्रयास करना चाहिए वैष्णव का सब लेने के लिए, वैष्णव की सेवा करने के लिए। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि वैष्णव की सबसे अच्छी सेवा कैसे की जा सकती है। हाँ प्रसाद के नाम से उनसे श्रवण करके और बिल्कुल पास में कुछ और बोलो,
उनके आदेशों का पालन करें,
उनके आदेशों का पालन करके कुछ और बताओ, प्रश्न पूछ के वैष्णव को भोजन नहीं कराओगे चलेगा, नहीं खिलाया फर्क नहीं पड़ता, पानी नहीं पिलाओगे चलेगा, लेकिन अगर आपने वैष्णव को संतुष्ट करना है तो उनसे प्रश्न पूछो। इसका प्रश्न हमें भागवत में मिलता है, राजा का मुझे नाम दिया गया है, नवयुग के राजा के पास गए थे, निमि राजा निमि के पास जब नवयुग गए थे तो अंदर नहीं घुसने दिया उनको, दरवाजे से तो बहे से चिल्ला कर पूछना शुरू कर दिया महाराज ने, तो क्या नवयुग में घुसे गए, अरे भैया बैठे तो दो। वैष्णव को प्रसन्न करना है, भक्तों को प्रसन्न करना है तो क्वेश्चन पूछ लो उनसे, जो प्रसन्नता वैष्णव को प्रश्न सुनने से होती है, क्योंकि प्रश्न के माध्यम से उनको प्रश्न कथा करने का अवसर प्राप्त होता है। तो और भगवान कृष्ण ने भगवदगीता में बोला क्या, बोला बड़ी प्रश्न सेवा, वैष्णव की सेवा करनी है तो उनसे क्वेश्चन पूछ लो, क्वेश्चन पूछना वैष्णव की सबसे बड़ी सेवा है। चैतन्य महाप्रभु ने अपने आचरण के द्वारा बताया, चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय से क्वेश्चन पूछे, चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर से क्वेश्चन पूछे, जब चैतन्य महाप्रभु संकोच नहीं कर रहे क्वेश्चन पूछने से तो आपको भी संकोच नहीं होगा। प्लीज अगर वैष्णव को संतुष्ट करना है, वैष्णव को पसंद करना है तो प्लीज आप उनसे क्वेश्चन पूछिए, अपने प्रॉब्लम्स वैष्णव के साथ शेयर कीजिए और उस उत्तर के माध्यम से वैष्णव की कृपा प्राप्त कीजिए, यही वास्तविक वैष्णव संघ है हरे कृष्ण श्री कृपा जी। अगर आपका कोई प्रश्न है तो युधिष्ठिर महाराज ने ये क्वेश्चन पूछा था विश्वकर्मा से, अनुशासन पर्व में, कि अलग अलग तरह के अतिथि आएंगे, किसकी सेवा करें किसकी नहीं करें, तो विश्वकर्मा ने बोला ऑफकोर्स वैष्णव की, ब्राह्मणों की सेवा करना, उनको संतुष्ट करना सबसे श्रेष्ठ है, लेकिन अतिथि की आप योग्यता नहीं देख सकते, अतिथि आएगा आपका कर्तव्य है उसको संतुष्ट करना, कैसा भी अतिथि। आप जज नहीं बन सकते, जज की कुर्सी में बैठे सबसे इंपॉर्टेंट आता और कृष्णदास रविदास गोस्वामी बोल रहे हैं चैतन्य चरितामृत में कि जो भद्र अभद्र का जो ज्ञान है वो भ्रम है, इस चीज को दिमाग से निकाल दो, ये सही है वो गलत है, ये अच्छा बनता है वो खराब हो, निकाल दो दिमाग से बाहर। जब तक आप जज बने रहोगे, जब तक आप ये कहते रहोगे कि ये सही है वो गलत है, ये सही है वो गलत है, ये सही है वो गलत है, तब तक दिमाग भगवान क्यों आने जाए। गोपाल भट्ट गोस्वामी की जो चेतना है, जो मानसिकता है, उसको स्वीकार करो। गोपाल भट्ट गोस्वामी कह रहे हैं जो भक्त हैं वो भी भगवान कृष्ण की सेवा में लगे हैं, जो अभक्त हैं वो भी भगवान कृष्ण की सेवा में लगे हैं, माया की सेवा में भाग्य सभी ठीक है। अपना दिमाग उसमें खर्च मत करो, कौन देंगे कौन मना, आप सेवा करो और भगवान का ध्यान करने में, भगवान की शिक्षाओं को समझने में, उस पर अपनी चेतना, अपने जो मस्तिष्क है, सारा जो पावर है वहां पर लगा, किसी को जज करने में पावर नहीं करता।
जब अपनी माँ को कहते थे जूस दे, ये जो पेरेंट्स हैं
जब उनको देखते थे घर कभी बहन बने कहीं तो उनको प्रणाम करते थे, तो उनकी माँ बोलते थे कि क्या कर रहे हो भैया, मेरे पड़ोसी जी के लिए तो क्या बोलेंगे। उन्होंने बोला नहीं, मेरे गुरु का आदेश है अपने माँ बाप का आदर करने के लिए, तो मैं उसको छोड़ नहीं सकता। तो चैतन्य महाप्रभु एक्चुअली ये बता रहे हैं कि भक्ति के बहाने अपने माँ बाप का बुजुर्गों का आदर करना मत छोड़ो, उनका आदर करना नहीं छोड़ सकते चाहे आप भक्त हो। आपने उनको कोई वचन दिया पूरा नहीं कर पाए, हाँ आप एटलीस्ट ये शर्मिंदगी महसूस करो, ये दुख आपके हृदय में होना चाहिए कि मुझे करना चाहिए था मैं नहीं कर पाया, इतना अवश्य होना चाहिए।
थैंक यू प्रभु। एक और प्रश्न ये था कि जैसे जब ये दरवाजा अमित जी वाला आपने प्रसंग बताया, इसमें हम देखते हैं कि उन्होंने भगवान की परीक्षा ली, उनको खुद को भी घी से लेकर करने को कहा, जी को विश्वविद्यालय आगे रहने को कहा। तो हम देखते जब ब्रह्मा जी ने भगवान की परीक्षा लेनी चाहिए और वो और गाय बच्चों को गायब कर दिया वहां से, तो जब वो वापस मुझे जब समझ आई कि गलती मैंने करी तो उनको बड़ा दुख हुआ और उन्होंने भगवान को भी क्रोध आया क्योंकि उनके जो प्रिय थे उनको उन्होंने कष्ट देने का प्रयास किया। तो उन्होंने जो है अलग ही ब्रह्मा जी ने काफी स्तुतियां करी और उसके बाद जो है भगवान ने उनको क्षमा कर दिया। तो अब रुक्मिणी जी और रुक्मिणी जी के साथ साथ जो उनकी और द्वारकावासी थे जो कि भगवान के अपने पार्षद हैं उनके बहुत प्रिय हैं जो द्वारका में रह रहे हैं, उन्हें भी दुख पहुंच रहा है इस दुर्वासा मुनि के जो है इस कार्य से, रुक्मिणी जी को भी पहुंच रहा है और उनके जो द्वारकावासियों को भी पहुंच रहा है, रुक्मिणी जी को नहीं पहुंच रहा है द्वारकावासियों को पहुंच रहा है, वो काफी क्रोध कर रहे हैं पर कुछ कर नहीं पा रहे। तो ये इसको कैसे समझा जाए कि भगवान ने इसको कैसे टॉलरेट कर दिया जबकि ब्रह्मा जी के ऊपर उन्होंने क्रोध किया, और ऐसा भाव क्या था दुर्वासा मुनि के मन में?
सो एक्चुअली ब्रह्मा जी पहली बात है कि ब्रह्मा जी की जो चेतना थी और भगवान और दुर्वासा मुनि की चेतना में जब उन्होंने वो कार्य किए जो उन्होंने किए उन्होंने बहुत सारा था। दुर्वासा मुनि ये नहीं सोच रहे थे कि ये थोड़ा भगवान है, वो ये नहीं सोच रहे थे। तो दोनों के जो परिणाम फर्क हुआ, और दूसरी बात यह है कि अगर हम ब्रह्मा जी की बात करें, ब्रह्मा जी एक्चुअली में हमारे संप्रदाय के आचार्य हैं, इसीलिए ब्रह्म मोहन लीला नहीं है, ब्रह्म विमोहन लीला है। भगवान ने ब्रह्मा जी पर विशेष कृपा करने के लिए इस लीला को संपन्न किया। भगवान एक्चुअली में क्रोधित नहीं होते, भगवान किसी को क्रोधित नहीं होते, लेकिन भगवान अपने भक्तों के माध्यम से शिक्षाएं जरूर देते हैं। तो जो ब्रह्म भगवान में है बहुत ही शिक्षा प्रद बहुत ही गहन विषय है, इससे बहुत सारी शिक्षाएं आती हैं, उसमें कभी मौका मिलेगा एक दो घंटे का समय चाहिए उस पर चर्चा करने के लिए। लेकिन आप ये मत ये नहीं समझना चाहिए कि ब्रह्मा जी ने कोई बड़ी भारी गलती कर दी, कुछ नहीं। ब्रह्मा जी भगवान के भक्त हैं और निरंतर भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, और ब्रह्मा जी के माध्यम से भगवान ने कई उद्देश्यों को साध्य किया, भगवान ने उद्देश्यों को पूरा किया। तो ब्रह्मा ब्रह्म मोहन लीला को देखने का कोई एक दृष्टिकोण नहीं, कई दृष्टिकोण।
तो दुर्वासा मुनि जी के मन में ऐसा क्या भाव था जो उन्होंने ऐसी परीक्षा लेनी चाहिए?
कई बार जो भक्त है वो वात्सल्य भाव में भगवान को ही अपने पुत्र के रूप में या अपने अनुज के रूप में देखते हैं और उनको अनेक प्रकार से वरदान देना चाहते हैं, और भगवान के अपने भक्तों के माध्यम से और अपने आचरण से जन साधारण को ये शिक्षा देना चाहते हैं कि एक गृहस्थ का है एक भक्त का क्या आचरण होना चाहिए। अगर ऐसी घटनाएं नहीं होंगी तो हमारे लिए आदर्श स्थापित कैसे होगा? तो आदर्श स्थापित करने के लिए कैसा आचरण करना चाहिए? भगवान इस तरह की घटनाएं करते हैं, इस तरह की लीलाएं करते हैं।
लेकिन इसमें जैसे रूप गोस्वामी कहते हैं उद्देश्य निर्देश कि हम लेते हैं माध्यम अधिकार को जिसके मन से
सोचा। रूप गोस्वामी उद्देशानंद में बोल रहे हैं कि आप कनिष्ठ मध्यम और उत्तम अधिकारी का आप विवेक से निर्धारण करें, तो वो सही गलत के निर्धारण के लिए नहीं है। वो इसलिए बोल रहे हैं, उसका उद्देश्य है कि आप किसी भक्त के साथ कैसा आचरण करने मांगे, कनिष्ठ भक्त के साथ में आप कैसा आचरण करो, मध्यम के साथ में कैसा आचरण करो, उत्तम के साथ में कैसा आचरण करो, आपके हरेक भक्त के साथ एक ऐसा आचरण तो कर ले सकते हैं। आप अपने गुरु के साथ में और जो आपके साथ बच्चा के आश्रम में रह रहे हैं उनके साथ एक तरह का व्यवहार न करोगे। तो कैसा व्यवहार करना चाहिए ये निर्धारण करने के लिए रूपों को स्वामी तीन तरह के भक्तों की विवेचना करते हैं। उसमें सही गलत की बात नहीं होती, उसमें यह बता रहे हैं कि उत्तम मुख्य के साथ ऐसा व्यवहार करो, मध्यम के साथ ऐसा, कनिष्ठ के साथ ऐसा। सही गलत के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। जैसे आप ब्रह्मचारी आश्रम फॉर एग्जाम्पल रह रहे हो, मंदिर में रह रहे हो, तो मंदिर में हर तरह का भक्त है, ब्रह्मचारी भी भक्त भी। और जब भक्त रहते हैं सेवा कर रहे हैं गलतियां भी होती हैं, तो बेसिक पॉइंट यही हो कि गलती को मेडिटेट मत करो कि उसने ये गलती करती, उसने ये गलती होगी, उसमें ये कमी है, उसमें ऐसा है, उसमें ऐसा है, ये ध्यान रखने की जरूरत है। भक्त के गुणों पर ध्यान देना चाहिए, भक्त के अवगुणों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। इसलिए तो भगवान को झुकते हैं, भगवान को झुकते हैं, भगवान को झुकते हैं जब भक्त गलती करता भगवान को झुकते हैं ताकि उसके दोषों पर ध्यान न दे। जब भगवान राम बोलते हैं भगवान उसके भक्त के गुणों को देखते हैं। तो जब भगवान ये काम कर रहे हैं तो हमें क्या प्रॉब्लम है करने के लिए कोशिश। इसीलिए जो बेसिक पॉइंट ये है कि हम अगर किसी भक्त की हम जिस चीज पर मेडिटेट करेंगे, जिस चीज पर ध्यान रखेंगे, वो गुण या अवगुण हमारे अंदर आ जाएगा। अगर हम किसी की कमी पर ध्यान लगाएं तो धीरे धीरे समय के साथ में वो कमी हमारे अंदर भी आ जाएगी। क्यों आ जाएगी? क्योंकि भगवान ने आशीर्वाद दे रखा है, ये यथा माम प्रपद्यते ताम सदा भजामि। आप मेरे साथ या मेरे भक्तों के साथ जैसे व्यवहार करोगे आपके साथ वैसे ही होगा। अगर हम किसी भक्त में कमी ढूंढ रहे हैं हमारे अंदर कमियां लक्षित हो जाएगी। और भगवान ने चैतन्य महाप्रभु ने अपने लीला में कौन है वो भाई जगह के जो प्रसंग है उसमें चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि अगर किसी ने दोषों पर ध्यान दिया वो दोष उसी को प्राप्त हो जाए। इसीलिए किसी के दोष पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर आप दोष पर ध्यान देना है सिर्फ एक व्यक्ति किसी के दोषों पर ध्यान दे सकता है, दो व्यक्ति हो सकते हैं। एक तो गुरु, गुरु की काम है, गुरु का काम आप गुरु को देखना नहीं है, गुरु का काम आपके दोषों को देखना है, सुधारने में। और दूसरा व्यक्ति कौन है? जो टेम्पल प्रेसिडेंट है, टेम्पल प्रेसिडेंट का काम है कमियों को देखना ताकि सुचारू रूप से चल सके। और जो भक्त जहां पर टेम्पल प्रेसिडेंट या काउंसिलर के अंदर जो रह रहे हैं वो उसको उसकी कमियां दिखाकर उसको आगे बढ़ा सके, तो उसके पीछे कमियां दिखाने का मतलब उसको नीचा दिखाना नहीं है, उसको ऊपर उठाना है। तो दो व्यक्ति के अतिरिक्त और किसी को कमी में ध्यान नहीं देना चाहिए। ओके धन्यवाद। अगले आप
थैंक यू
सोचा तो इसकी सुना हरी बिना तीन तरह की ऐसी सुना हरे बिना तीन तरह की सुनना है
अतिथि आपके जो ये गृहस्थ का धर्म है कि भूख खाने से पहले अगर उसके द्वार पर कोई खड़ा है उसको उसको भोजन देना चाहिए पात्र पात्र का विचार नहीं कर सकते ये सदाचार है सदाचार के चलते ये काम करना गृहस्थ व्यक्ति के लिए इंपॉर्टेंट है चाहे वो भक्त है चाहे नहीं भक्त जो है भक्त विशेष ध्यान रखता है कि वो वैष्णव को बार बार अपने घर पर आमंत्रित करे और अपने घर को अपने पति पत्नी बच्चों को घर की जितनी भी सुविधाएं हैं उसको भगवान के भक्तों की सेवा के माध्यम से भगवान की सेवा में सो बेसिकली जो धर्म के जो नियम बहुत सूक्ष्म है हम भक्त बनने का मतलब यह है कि हमारा जो दृष्टिकोण है वो संकीर्ण हो जाए हमारा दृष्टिकोण बल्कि बढ़ना चाहिए बजाय कि संकुचित होने के उदार होना चाहिए हमारा दृष्टिकोण भक्त को हमेशा ये सोचना चाहिए कि हर व्यक्ति का कल्याण कल्याण कैसे करें तो कोई अभक्त भी आ गया कोई भी आ गया भक्त ये सोचेगा कि इसके कल्याण का एक अवसर मिलेगा कैसे उसको अगर हम कृष्ण प्रसाद देंगे तो कृष्ण प्रसाद के माध्यम से उसका कनेक्शन होगा भगवान से अब चाहे उसको एक अभ्यास मुक्ति प्राप्त हो गई और चाहे जिस जन्म में चाहे किसी भी जन्म में वो कृष्ण भक्ति में जुड़ेगा ही जुड़ेगा इसमें कुछ मुख्य नहीं हम ये सोचना शुरू कर देते
हैं भजन महाराज का गंगा जी का कैसे अगर काफी लोग आएंगे महात्मा के अवसर पर आएंगे तो गंगा जी का शुभ करेंगे तो इसमें देखने में लगता है कि हम गंगा जी की शायद कहीं महिमा को हम क्योंकि कह रहे हैं शुद्ध भक्त जब आएंगे तो वो भी लेकर रहेंगे और गंगा जी को एक महान शुद्ध भक्त है
इस जो इस पर्टिकुलर शिक्षा का जो उद्देश्य है वो गंगा जी की महिमा को नीचा दिखाना नहीं है वो भक्तों की महिमा को ऊंचा दिखाना है जैसे पीछे किसी भक्त ने जैसे क्वेश्चन पूछा था कि हम लोग गुरु 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 की बात करते हैं वैकुंठ का है वैकुंठ का मतलब क्या बता रहे वैकुंठ क्या वैकुंठ को नीचा दिखा रहे हैं हम अपने वैकुंठ को नीचा नहीं दिखा रहे हम ये बोल रहे हैं कि जो गुरु ब्राह्मण वहां पर जितने भी रस है वो अपनी पूर्णता में परिलक्षित हो रहे हैं मतलब पूर्णता में प्रकट हो रहे हैं वैकुंठ धाम में हर रस अपनी पूर्णता में प्रकट नहीं होगा तो इसका मतलब यह है कि वैकुंठ नीचे हो गया या वैकुंठ घटी का जगह है जो भक्त जिस भाव में है उस भाव में वैकुंठ में रह रहा है पूरी तरह से संतुष्ट है आगे नहीं जाना चाहता इनफैक्ट हनुमान जी को जब द्वारका में मथुरा जाने का मौका मिला था हनुमान जी देखा बैठ जाता भरत भागवत में इसका सनातन गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं थोड़ा भैया में यही पुष्टि कर रहा था सो अगर हम भक्तों की महिमा का वैष्णव की महिमा का वर्णन कर रहे हैं उसका उद्देश्य गंगा जी ने किसी को भी नीचा दिखाना नहीं है ये बताना है कि भक्त की एक्चुअली में महानता है क्या उसको किस तरह से समझा जा सकता है किसी भी तरीके से हम अपने दिमाग में ये डाल लें कि और अगर हम निरपेक्ष भाव से देखें तो गंगा जी में स्नान करने से अच्छा है एक भक्त के वचनों का स्नान करें और प्रभुपाद ने कितनी जगह बोला भागवत में लिखा है कि जो गंगा स्नान करने के लिए जा रहा है वो भला है बोला नहीं बोला है ना लेकिन जो व्यक्ति समझदार है मनुष्य है वो गंगा के किनारे बैठे वैष्णव का संग करेगा चाह रहे थे, तो इससे आप गंगा जी को नीचा नहीं दिखा रहे लेकिन वैष्णव की महानता के बारे में संशय नहीं होगा। वैष्णव सबसे महान है।
बहुत अच्छी क्लास थी। मेरा प्रश्न था बताया कि वैष्णव की सबसे बड़ी सेवा उनसे प्रश्न पूछना है, तो हम भक्ति रामचंद्र ठाकुर जी के प्रसंग में सुनते हैं कि मदन मोहन मालवीय जी आए थे उनसे प्रश्न पूछने के लिए, लेकिन
तो भक्ति सिद्धार्थ सुनने का क्या क्या बर्तन साफ करो क्यों बोला, क्या उस प्रसंग से मदन मोहन मालवीय जी के सबसे दूर हुए थे, समझे खूब है। जो शुभ भक्त है जो एक्सपर्ट होती है उसको पता है कि सबसे दूर कैसे पता है। मदन मोहन मालवीय जी के सबसे में रुकावट थी अहंकार, और भक्ति सिद्धार्थ सरस्वती ने उनका अहंकार काटने के लिए और सेवा के माध्यम से उनको स्मृति प्रदान की ताकि उनका संशय दूर हो सके। जैसे ही मदन मोहन मालवीय जी ने भक्ति सिद्धार्थ सरस्वती जी की बात मानी, नहीं मान सकते बात मानी, उन्होंने लोअर पोजीशन एक्सेप्ट कर ली मदन मोहन मालवीय जी ने, तो अहंकार दूर हो गया। जब उन्होंने झूठे भक्त काम किए तो भगवान की सेवा में लग गए, भगवान की सेवा के माध्यम से उनको स्वीकृति प्राप्त हुई और उस स्वीकृति के माध्यम से विनम्र चेतना के अंदर उनको उनके पोषण का आंसर दिया। पोषण का आंसर जरूरी नहीं है कि मुंह से बोलने दिया जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए तरीका पोषण भी लिया जा सके।
एक प्रकार से मदन मोहन मालवीय जी ने प्रश्न बिना पूछे ही प्रश्न पूछ लिया और उन्हें आंसर दे दिया ही आंसर दे दिया।
बहुत ऐसा प्रश्न ने बोला कि वर्ड कहने से बहुत बड़ी गुरु उठा रहे।
प्रश्न पूछना सिर्फ हमेशा ये नहीं है कि हम वचनों के माध्यम से पूछ
रहे। कई बार ऐसा होता है, कई बार गुरु को पता चल जाता है आप इसलिए आए और गुरु आपको उसका समाधान दे देता है, कई बार डायरेक्टली कई बार इनडायरेक्टली। ऐसा मैंने दर्शनों का अनुभव किया अपने ऊपर भी और दूसरे भक्तों के ऊपर। तो जरूरी नहीं है कि आपने वो क्वेश्चन पूछ ही लिया, आप गुरु के पास पहुंचे गुरु सेटिस्फाइड हो जाते हैं उससे और गुरु को बताए किसलिए आया हुआ और गुरु आपके बिना पूछे क्वेश्चन पूछे भी आपकी समस्या का समाधान कर सकते। गुरु आपको ऐसी सेवा में लगा सकते हैं कि उससे आपको आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, जैसे भक्ति सिद्धांत का समझ नहीं। श्री प्रभुपाद की जय।